मेरे आत्मीय युवा मित्रों नमस्कार। आज 24 जुलाई 2018 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और दोस्तों आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन चार नौजवान मित्रों का जिन्होंने एकेडमी की 21 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं राहुल कुमार, आप जगदलपुर छत्तीसगढ़ से हैं, अर्जुन सिंह खुराना जहांगीराबाद उत्तर प्रदेश से हैं, रमन कुमार आपका गांव है बेलसंडी तारा जिला समस्तीपुर बिहार, और भावना गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से हैं। तो राहुल, अर्जुन, रमन और भावना आप चारों मित्रों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों आज के मुख्य विषय के तहत मैं आपसे भारत अफ्रीका संबंधों के बारे में कुछ बातें करूंगा, लेकिन इससे पहले कुछ दूसरी खबरों को आइए देख लेते हैं। दो छोटी छोटी खबरें हैं। एक तो आपने सुना कि जो भीड़ के द्वारा की जाने वाली हिंसा की घटनाएं लगातार देश में घटित हो रही हैं और इसको लेकर के अब बहुत ज्यादा बहस भी होने लगी है। तो अब सरकार ने एक कमेटी बनाई है, सूचनात्मक है केवल, हमारे जो गृह सचिव हैं उनकी अध्यक्षता में, और उनको कहा गया है कि आप उपाय सुझाइए कि इसके लिए क्या किया जाना चाहिए। तो बस एक छोटी सी सूचना है, कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है, बस चूंकि यह एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट है भीड़ तंत्र द्वारा जो कभी घटनाएं घटित की कराई जा रही हैं, तो उसको देखते हुए यह एक उसका एक डेवलपमेंटल प्वाइंट है। जिस तरीके से अब ये चीजें आगे बढ़ रही हैं उसी का आप ये कह लीजिए कि माइलस्टोन है। एक मित्रों आज मैं आपको बहुत अच्छा हिंदुस्तान दैनिक हिंदुस्तान का एडिटोरियल कमेंट प्रोवाइड कर रहा हूं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका शीर्षक है मेघालय युग। मेघालय युग ये आपके ज्योग्राफी का विषय है और हो सकता है कि प्री में इस पर क्वेश्चन पूछ लिए जाए और बहुत असंभव नहीं है कि मेंस में भी छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाए। कुल मिलाकर बात यह है मित्रों कि लगभग यूं कह लीजिए कि 4200 साल पहले यानी कि 2000 में तो हम रह रहे हैं आप मान लीजिए मोटे तौर पर, उससे 2200 ईयर्स BC बिफोर क्राइस्ट, ये जो युग है इस युग को अब मेघालय युग का नाम दिया गया है। मेघालय युग की यह युग मेघालय युग था। तो अगर आप 4200 साल पहले के समय को देखें तो आप पाएंगे कि हमारी जो सभ्यता और संस्कृति का विकास लगभग इसी के आसपास तेजी के साथ होना शुरू, हमारी जो सिंधु घाटी की सभ्यता भी है वो लगभग इसी के आसपास की है, हालांकि इससे पहले भी नदी घाटियों में लोग बसने लगे थे, इधर मेसोपोटामिया वगैरह में इससे पहले की भी बसाहट मिलती है। फिर भी सामान्य तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जो हम आधुनिक संस्कृति और सभ्यता को देख रहे हैं उसकी शुरुआत इसके आसपास हो गई थी, यानी कि अभी जो सभ्यता हमें दिखाई दे रही है उसकी शुरुआत जहां से हुई है वो मेघालय युग कहलाता है। और याद रखिए कि जो मेघालय युग है ये केवल भारत के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए है। इसका नाम मेघालय युग क्यों रखा गया? देखिए वैसे तो नाम होता है मेघ का आलय यानी कि बादलों का घर, चेरापूंजी यही है ना, तो उसको देखते हुए कभी रखा गया होगा नाम मेघालय जहां खूब बादल घिरे रहते हैं। दरअसल मेघालय युग इसे इसलिए कहा गया है कि अभी जो नए युग की शुरुआत देखिए चट्टानों के आधार पर की गई है ना, कि चट्टानों के आधार पर उनका युग परिवर्तन किया गया है, युग के की लेंथ का निर्धारण किया गया है। तो अभी के काल को जिन चट्टानों के आधार पर निर्धारित किया गया है तो उसके निर्माण की प्रक्रिया को, कि ये चट्टाने कहां से कब से बननी शुरू हुई, जो इसके वैज्ञानिक हैं भौगोलिक वैज्ञानिक हैं उन्हें मेघालय की गुफा में मिला, वे चट्टाने मेघालय की गुफा में मिली। और चूंकि वो मेघालय की गुफा में मिली इसीलिए इस पूरे के पूरे युग को मेघालय युग कहा गया है। तो मित्रों ये चूंकि एडिटोरियल कमेंट में प्रोवाइड कर ही रहा हूं तो इसलिए विशेष बात करने की आवश्यकता नहीं समझता, इसे आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा और छोटा सा एक नोट भी तैयार कर लीजिएगा, अपने काम की चीजें उसमें आप ऐड कर लेंगे तो उससे आपको काफी मदद मिल जाएगी। दोस्तों आइए अब हम लोग मुख्य विषय पर कुछ बातें करते हैं। मैंने भारत अफ्रीका संबंध को मुख्य विषय के रूप में क्यों चुना है, इसे आप बड़े आराम से समझ गए होंगे, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी बाकायदे अफ्रीकी देशों की यात्रा पर गए हुए हैं। इस दौरान वो 3 अफ्रीकी देशों में जाएंगे और इसकी शुरुआत वो रवांडा से उन्होंने किया है, राइट। कल के अगर आपने डीडी न्यूज सुनी हो, देखी हो, तो आप पाएंगे कि अफ्रीका में हमारे इससे पहले जो दक्षिण अफ्रीका में जो हमारे राजदूत रहे थे उनके साथ बातचीत की गई और मुझे वो बातचीत बहुत प्यारी लगी, बहुत अच्छी लगी। प्यारी और अच्छी इसलिए कि वो बड़े ले मैन के अंदाज में, हालांकि वो डिप्लोमेट्स हैं, लेकिन बड़े अच्छे तरीके से, जैसे कि किसी जनरल स्टडीज के स्टूडेंट को भारत अफ्रीका संबंधों के बारे में समझाया जाना चाहिए, उस अंदाज में वो समझा रहे थे और बता रहे थे कि अफ्रीका भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो फ्रेंड्स, तो आप उसे देखिएगा, तो अफ्रीका के बारे में आपकी एक धारणा बनेगी कि ठीक है, भारत और अफ्रीका के संबंध किस तरीके के होने चाहिए। और याद रखिए कि भारत अफ्रीका के संबंध आपके मेंस की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। 2 साल पहले इस पर बाकायदे प्रश्न भी आया है मेंस में, जनरल स्टडीज के आपके इंटरनेशनल अफेयर्स वाले हिस्से में, यानी कि सेकेंड पेपर में। आगे भी आ सकता है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते, प्रश्न पूछा जा सकता है, और अगर नहीं भी पूछा जाए तब भी यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपको तैयारी करनी ही चाहिए। कल के न्यूज में एक शब्द आपने सुना होगा, किगाली। वहां हमारे प्रधानमंत्री जी जाएंगे किगाली। देखिए, सिविल सर्विस में होता क्या है, सिविल सर्विस में इसी तरह से प्रश्न पकड़े जाते हैं, डायरेक्ट नहीं होते, इनडायरेक्ट होते हैं, लेकिन उसका कोई ना कोई डायरेक्ट सूत्र होता है। जैसे कल के न्यूज में किगाली को बार बार हाईलाइट किया गया, जहां हमारे प्रधानमंत्री जी जाएंगे, राइट। तो ये किगाली जैसे ही बात आती है तो जो भी स्टूडेंट थोड़ा सा अलर्ट है तो उसको ध्यान आएगा कि यार किगाली कभी और सुना था इसके बारे में, तो आएगा कि अरे किगाली में एक समझौता हुआ था, किगाली में एक समझौता हुआ था। तो बट नेचुरल है कि फिर वो उस किगाली समझौते को जानने की कोशिश करेगा, देखने की कोशिश करेगा कि भैया ये कब हुआ था, किस चीज के बारे में था। बस इतना जान लीजिए और आपका किगाली समझौता तैयार हो गया। और अगर एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाएगा तो फिर आपको, अब अगर आपने अलर्ट होकर के उसके बारे में पढ़ लिया है तो आप खुश हो जाएंगे और लगेगा बड़ा सरल प्रश्न है। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप कहेंगे बताओ भला किगाली समझौते पर पूछ लिया गया, कोई पूछने की बात है। तो दोस्तों, ये जो किगाली समझौता हुआ था ये 15 अक्टूबर 2016 को हुआ था, रवांडा में है। 15 अक्टूबर 2016 को, डेट आपको जानने की जरूरत नहीं है लेकिन सन जानना जरूरी है, 2016 को हुआ था। इस समझौते पर 170 से अधिक देश, शायद 176 देशों ने इस पर साइन किए थे। और ये जो समझौता था ये ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं उनको क्रमबद्ध तरीके से 2045 तक कम करने के बारे में था। आप जानते हैं कि जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, जिसमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन सबसे ज्यादा मायने रखता है, HFC, इसकी वजह से पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता चला जा रहा है और इसकी वजह से दूसरी समस्याएं खड़ी हो रही हैं। तो जिन देशों ने हस्ताक्षर किए हैं उन्होंने एक तरीके से प्रतिबद्धता व्यक्त की है कि वो अपने यहां ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम करेंगे। और ये यकीन किया जा रहा है, जिस तरीके से वो प्लान किया गया है, कि 2050 तक जो विश्व का तापमान है, जो हम कह रहे हैं कि बढ़कर इतना हो जाएगा, तो उसमें 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड कंट्रोल कर लिया जाएगा कि इतना कम हो जाएगा। और इसकी खासियत यह है कि ये एक यूं कह लीजिए कि टाइम फ्रेम में है, समय सारणी है। ये नहीं कि ठीक है 2045 तक आप कम कर दीजिएगा, नहीं, इस सन तक आप इतना करेंगे, इस सन तक आप इतना करेंगे, इस सन तक आप इतना करेंगे, तो बकायदे वो टाइम टेबल फिक्स किया गया है। तो ये है किगाली समझौता जो रवांडा में ही हुआ था, इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। अब फ्रेंड्स मैं आता हूं, देखिए अभी जो प्रधानमंत्री की यात्रा है उसके ऊपर, मैं दक्षिण अफ्रीका के बारे में बात करने नहीं जा रहा हूं, वहां ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री जी शामिल होंगे और ब्रिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट संगठन है, तो आपको उस सम्मेलन में जो कुछ भी समझौते होंगे उस पर भी अपनी नजर रखनी है, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी तो हम लोग अफ्रीका एज ए होल लेकर के चल रहे हैं। देखिए जो रवांडा है, देखिए आप वो कहां है, कल के न्यूज में भी आपने सुना होगा, वो अफ्रीका के पूर्वी भाग में है, अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में। थोड़ी सी तकलीफ कीजिए, अब आप थोड़ा सा अपना एटलस निकाल लीजिए, वर्ल्ड मैप देखिए, तो फिर आप पाएंगे कि अगर भारत से कोई भी व्यक्ति या कोई भी जहाज समुद्र के जरिए अफ्रीका महाद्वीप जाना चाहेगा तो सबसे पहले वो कहां पहुंचेगा? सबसे पहले पूर्वी तट पर पहुंचेगा, राइट? इसका मतलब हुआ कि जो पूर्वी तट है, पूर्वी तट के जो देश हैं, वो है भारत के लिए अफ्रीका के प्रवेश द्वार हैं। इस हिसाब से आप रवांडा की इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। और फिर ये जो बीच का हिस्सा है, देखिए आपको जो गैप दिखाई देगा भारत और अफ्रीका महाद्वीप के बीच में, वो समुद्र है, पूरा का पूरा हिंद महासागर है। हिंद महासागर का भारत के लिए कितना महत्व है आप बहुत अच्छे से जानते हैं, चाहे वो व्यापारिक दृष्टि हो, चाहे वो खनिज संसाधन का मामला हो, चाहे वो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न ही क्यों न हो। और फिर ये पूरा का पूरा जो अफ्रीका महाद्वीप के बाद जो भारत का हिस्सा है ना, तो अफ्रीका के इसी पूर्वी तट पर एक सोमालिया जैसे देश है। तो अक्सर आप अखबारों में सोमालिया के बारे में, सोमालिया के जो समुद्री डकैत है ना, वो बड़े नोटोरियस हैं, बड़े कुख्यात हैं, वो भी आपको पढ़ने को मिलते होंगे। तो अगर हमें अपने स्टीमर्स को, मालवाहक जहाजों को सुरक्षित रखना है, तो बट नेचुरल है कि उसे फिर इन डकैतों से बचाना पड़ेगा, जिसे हम समुद्र दस्यु कहते हैं, जल दस्यु कहते हैं। तो इसके लिए बट नेचुरल है कि जो पूर्वी तट के राष्ट्र हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, हिंद महासागर की दृष्टि से भी, सुरक्षा की दृष्टि से भी, अपने स्टीमर की आवाजाही को लेकर के भी। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ, रवांडा भले ही छोटा सा देश है, यानी कि इसकी आबादी मुश्किल से 1 करोड़ है, बहुत ही छोटा सा देश है। और कल उन्होंने, डिप्लोमेट्स ने यही कहा कि सवाल ये नहीं है कि वो कितना छोटा देश है, कितना बड़ा देश है, हमें कितना बड़ा बाजार मिलेगा, हमें ये देखना होगा कि ओवरऑल हमारे लिए उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। तो उस हिसाब से रवांडा बहुत महत्वपूर्ण देश है। वैसे अगर आप टोटल इन अफ्रीका को आप देखें दोस्तों, तो अफ्रीका में मतलब टोटल लगभग समझता हूं कि शायद 54 कंट्रीज है। यस, अफ्रीका में 54 कंट्रीज है, और इसमें से 54 में से 47 कंट्रीज ऐसे हैं जो भारत के सैटेलाइट कनेक्शन से जुड़े हुए हैं। भारत के लिए बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात है। और भारत के लिए जो बहुत ही एक महत्वपूर्ण पॉइंट है अफ्रीकी देशों से अपने संबंध विकसित करने का, वो ये है कि पूरा का पूरा अफ्रीका का भी उपनिवेशीकरण हो गया था। जो यूरोप के देश है उन लोगों ने अपना कब्जा कर लिया था, जैसे हमारे यहां ब्रिटिश ने कर लिया था। तो जब ये देश आजाद होने की प्रोसेस में थे, जब यहां स्वतंत्रता संघर्ष की शुरुआत हुई, तब भारत ने हमेशा इनके स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन दिया और अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर इन राष्ट्रों की स्वतंत्रता का समर्थन किया कि नहीं, इन देशों को आजाद होना चाहिए। तो इसके कारण अफ्रीकी देश भारत के साथ अपने को बहुत घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ मानते हैं, वो हमारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तैयार है। अब भारत के ऊपर है कि कैसे वो अपने संबंधों को इनके साथ विकसित कर सकती, क्योंकि देखिए 54 देश है, तो यूएनओ में 54 वोट आपके पास है, हम सुरक्षा परिषद में अपनी स्थायी सदस्यता चाह रहे हैं, तो वहां अफ्रीकी देश हमारे लिए मदद कर सकते हैं। और फिर जो अफ्रीकी राष्ट्र हैं, आपको मालूम है कि वहां प्राकृतिक संसाधन, वन्य संसाधन, जैव विविधता, उसका तो सबसे बड़ा केंद्र अफ्रीका ही है, तो वो जो भारत के लिए आगे चल करके बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो मित्रों, भारत अफ्रीका संबंधों की पूरी जानकारी देना तो मेरे इतने कम समय में मेरे लिए संभव नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कुछ आपको झलकियां देने की कोशिश की है। और मेरा पर्पस यही था कुल मिलाकर बताना कि प्रधानमंत्री जी की इस यात्रा को आप सामान्य रूप में न ले, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पूरी गंभीरता से देखें, समझने की कोशिश करें। हाँ, जहां तक एक देश के साथ संबंधों की बात है कि रवांडा के साथ कैसे संबंध है, दक्षिण अफ्रीका के साथ कैसे संबंध है, उस पर आपका ज्यादा जोर नहीं होना चाहिए। जोर होना चाहिए एज ए कॉन्टिनेंट, अफ्रीका एक महाद्वीप है और इस पूरे के पूरे अफ्रीकी महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप के जो देश है उनके साथ भारत के ओवरऑल रिलेशन कैसे हैं और कैसे होने चाहिए और क्यों होने चाहिए। तो मित्रों, आज के मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूं, सभी ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से 5 दोस्तों के नाम हैं, रूपेश शर्मा, विनोद कुमार सिंह दरियापुर बिहार से, रीना कुमारी पासवान जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल से, सुशील बड़ियासर कात्यानी राजस्थान से, कात्यासनी राजस्थान से, और प्रतिभा, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।